वलम्मा और जब भी, अब ये भी वही लफ्ज है, लम प्लस मा, लम्मा। और जब कभी भी, जा अहुम आया उनके पास, या आई उनके पास, किताबन एक किताब, मिन इंदिल्लाही अल्लाह के पास से, कौन सी किताब, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाली, वेरीफाइंग, लिमा उस चीज को, ली वास्ते, मा जो मा हम उनके पास है। अब एक जुमले में सुनिए, और जब अल्लाह ताला की तरफ से इनके पास एक किताब आ गई जो उसकी तस्दीक करने वाली है जो इनके पास है, अब मुझे बताइए यहाँ किताब उनसे क्या मुराद है। जी नए साथियों में से कोई बताए। जी आप सफी, कुरान, शाबाश। मदीना में रहते थे बनी इसराइली, अल्लाह के नबी पर कुरान उतर रहा था, कुरान में वो सब कुछ था जो इनकी तौरात में पहले से खबरें दी हुई थी, तो इनको तो खुश होना चाहिए था ना। देखिए आपके ऊपर कोई बातें कर रहा है किसी महफिल में, इतने में आपकी एक दोस्त उठती हैं तो आपके हक में बोलती हैं, नहीं, वो ऐसी नहीं है, आप उनकी बुराई क्यों कर रहे हैं। तो आपको अपनी वो दोस्त अच्छी लगेगी कि बुरी? अच्छी लगेगी ना। कुरान तौरात के खिलाफ तो नहीं था, वो तो उसको मजीद खोल रहा था। अभी आपको खुद ही तो मैं रेफरेंसेस नोट कराती हूँ, बट दिलों में बुगज होता ना तो बात समझ नहीं आती। तो क्या पता चला कि यहूद के पास जब कुरान मोहम्मद सल्लम पर नाजिल शुदा आया जो मुसद्दिकुल लिमा माहुम, सवाल पैदा होता है माहुम से इधर क्या मुराद है। जी बताएंगे आप, आयत पे देखेंगे तो समझ आएगी वरना लॉस्ट है। माहुम से क्या मुराद है? कुरान उन चीजों की तस्दीक करता है जो उनके पास है। उनके पास क्या था जी? तौरात। उनके पास जो शरीयत थी कुरान उसकी मुवाफकत करता है, क्योंकि ये सब एक ही चश्मे के मुख्तलिफ रंग है। तो गोया के फिर यहाँ असूले दीन की मार्फत और वो सब कुछ है। खैर कुरान तो इनकी किताब की तस्दीक करता था। वो कानू और थे, कौन कान ना यकूनू, माजी में किसी चीज का करते ही रहना, थे वो, मिन कबलू इससे पहले, किससे पहले, नजूले कुरान से पहले, और आमिदे आमदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, कहाँ, मदीना में। क्या करते थे? यस्तफ्तहून अललजीन कफरू, वो फतह तलब करते थे उन लोगों के खिलाफ जो के कुफर करते हैं। फिर क्या हुआ? फलम्मा जाहुम, फिर जब वो आ गया उनके पास, मारफू जिसको उन्होंने पहचान भी लिया, किया क्या, ये जहां मैं रुकती ना वहां कौमे लगाया करें, तर्जमे पे नजर नहीं है अगर आपकी इस वक्त तो आपको आयत समझ नहीं आएगी, जबकि खास तौर पे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। हर जगह जहां मैं रुकती हूँ ना इसमें एक हिकमत होती है, एक डायलॉग बनता है अगर आप देखें ना। फलम्मा, पस जब, जा हुमाया उनके पास, किनके पास, मदीना के यहूद के पास, क्या आया, मारफू जिसको वो पहचान भी गए, किसको पहचाने थे, नंबर एक कुरान को पहचान गए, नंबर दो नबी सल्लम को पहचान गए। तो पहचानने के बाद क्या अगला दर्जा होता है, मान लो, लेकिन कफरू भी ही इनकार किया उसका, किसका इनकार किया, कुरान का, नबी का। अल्लाह का कमेंट ले लीजिए, फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, तो अल्लाह ताला की रहमत से दूर हैं काफिर, कुफर करने वालों पर अल्लाह की लानत है। तो अल्लाह की है तो फिर मैं भी आप भी कर दें। अब आप जरा जुमले को देखिएगा, जब हम ये आयतें पढ़ते हैं या ऐसे जुमले कुरान में पढ़ते हैं ना, फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, तो फिर हम क्या करते हैं, हम भी हक ले लेते हैं, ये लईन, ये फलां, इन पे लानत, इनको तोड़े। लफ्ज क्या है, लानतुल्लाही, अल्लाह की लानत है, आपकी तो नहीं। आयत में ये तो नहीं कहा गया फलानतुल मोमिनीन, फलानतुल मुस्लिमीन, फलानतु मोहम्मद, तो मुझे आपको लानत किसी पे करने की इजाजत नहीं। देखिए आपको मैं समझाती हूँ कि आपके बच्चे हैं 4-6, और आप घर में आई और आप अपने बच्चे को स्कूल का होमवर्क जो दे के गई थी वो उसने नहीं किया, आप एकदम गुस्से में आती हैं। अब जू ही आप अपने छोटे बच्चे पे गुस्सा करें तो आप ही की बड़ी बेटी भी उसी बच्चे पे गुस्सा करने लग जाए, तो आप कहेंगे तुम्हें क्या हुआ है, मैं जो बोल रही हूँ तो तुम्हें जरूरत नहीं है। तो गुस्सा आता है ना कि कोई आप किसी को डांट रहे हैं और बीच में दूसरा भी आपके बच्चे को डांटने लग जाए तो आपको बुरा लगेगा ना। यही बात इधर है, अल्लाह जाने उनके बंदे जाने काफिर कौन है कौन नहीं, मुझे आपको नहीं पता, क्योंकि हर नॉन मुस्लिम काफिर नहीं होता। काफिर वो है जिसको आप पैगाम पहुंचा दें, अच्छे तरीके से तबलीग कर दें, फिर ना माने। तो सारी बात का खुलासा क्या निकला, यहाँ नोट कीजिएगा कि यहूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मदीना में मज़हबी गिरोह के तौर पे मारूफ थे। मदीना के जो मुशरकीन हैं, पिछले सबक में बात हुई थी, उनके मुताबिक इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। अब ये चूँकि आए हुए तो बाहर से ही थे ना, देखा जाए तो मदीना के जो नेटिव्स, जो लोकल लोग थे, वो तो औसो खजरत ही थे ना, और यहूद की हैसियत मदीना में मुहाजिरी की थी ना। समझ आ रही है बात? बाहर जैसे अब आप देखें ना कि आप और मैं नॉर्वे में अगर 10 साल से भी हों तो हमारी हैसियत तो यहाँ मुहाजिर की है ना, हम बाहर से आए, इमिग्रेंट्स हैं हम। लेकिन जो नॉर्वे के लोग हैं, लोकल नॉर्वेजियन है, वो कहेंगे ये हमारा मुल्क है। तो जब यहूद की लड़ाइयाँ होती थी ना माजी में इन मदीना वालों के साथ, तो यहूद उनके साथ क्या बातें कहते थे? कहते थे कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, तुम हमारे साथ लड़ लो, झगड़ लो, देखना वो नबी आने वाला है जिसका वादा हमारी किताबों में, एक दफा वो आ गया ना तो हम उसके हाथ में हाथ मिला के फिर तुम्हें मजा चिखाएंगे। पीछे भी बात हुई आपसे, यहूद के मुंह से तो ये बातें सुन सुनकर मदीना के अंसार इतने ज़हनी तौर पे तैयार हो चुके थे कि कोई रहनुमा, कोई लीडर, कोई कायद आने वाला है। तो हत्ता के अल्लाह के नबी अभी मदीना भी नहीं आए तो ये हज करने गए, तो वहां खबर सुनी आजकल एक शख्स आए हुए, और जब वो आए हुए तो उनको पूछने गए तो वहां फिर उनको मान के आ गए। कहते यहूद, वो अंसार ने क्या कहा, हम क्यों ना पहल कर लें ईमान लाने में यहूद से ज्यादा। तो यही बात थी। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो अमली तौर पे क्या हुआ, आप पढ़ रहे हैं कई रुकू हो गए। बात समझ आ गई? बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े लोग कहते हैं बड़ा दिल करता है कोई दीन सिखाए, बड़ा दिल करता है कुछ करें, कोई बड़ा दिल करता है कोई दीन का बड़ा काम करें, अल्लाह सबाब जमा कर देता है। अब किधर हैं आप? मसरूफ होता है, हालात बदल गए हैं, जॉब आ गई है, फिर मुश्किल बढ़ी है, दूर बढ़ी है, क्लास नहीं हो रही, क्लास करें, क्लास करें, क्लास क्यों नहीं शुरू करते? चलिए अभी शुरू हो गई, ईद हमारी ख़त्म हो गई, दोनों ईदें, अब क्लास शुरू करें। अब किधर हैं? वो आज असम ईद की पार्टी है, वो हाजियों को भी तो मिलने जाना है ना, और वो आज मेरे घर में 50 लोग आ रहे हैं और कल अब मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ 50 ने आना है। सच बताएं आम तौर पर लोगों का नेमतों के साथ यही हाल नहीं होता? वो एक शेर है ना कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, नेमतों की याद आती ही उनके जाने के बाद है। माँ बाप दुनिया से चले गए, अब उनकी कदर आई, घर टूट गया, तलाक हो गई, अब उस शोहर की कदर आई तो क्या आई? बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले गए, अब उनकी कदर आई तो क्या आई? बहुत सारे लोग हिदायत की दौलत के साथ यही करते हैं। कानू यस्तफते हून, फतह मांगते थे। यहाँ तक तफसीर में आता है कि यहूद ने अपनी तौरात के वो सफ़े महफूज किए हुए थे। इमेजिनेशन में लाइए ना, मसलन जैसे ये तौरात है और इस तौरात में लेट्स सी अगर ये हम देखते हैं इस सफ़े पे इनके वो आयतें लिखी हुई थी कि नबी सल्लम आएंगे, और जो सारी आयतें हम पढ़ते हैं आगे भी हम बहुत दफ़ा पढ़ेंगे इंजील की, तो आयतें भी कुरान में कोटेड हैं, सूरह सफ़ में भी पढ़ेंगे कि वो नबी आएगा जो मुबशिर होगा और उसका नाम अहमद होगा। ये सारी किताबों में आयतें पूछती हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में कहा कि इन्नी मुबशिरम बि रसूलिन याति मिन बादी इस्मुहु अहमद। अब ये कुरान में आयत मौजूद है। अच्छा करते क्या थे? पूरी तौरात इधर उधर हो गई ना, अब ये 2 सफ़े बच गए। अब मिसाल है कि इसके ये 2 सफ़े इनके हाथ में है ना, तो जब कभी इन पे कोई मुश्किल पड़ी ना, वो ताबूत सकीना या उस संदूकचे में से फटाफट वो सफ़े निकाल के ना, तो यूं सफ़ा खोल के ना यूं दुआ मांगते थे, वो सफ़ा लिखा होता था आगे। और ये मिरहल इब्ने बासी की रिवायत है, वो कहते हैं कि वो सफ़ा खोल के अल्लाह को कहते थे कि अल्लाह तेरी इस किताब में ये लिखा हुआ है कि वो नबी आएगा, जल्दी से उसको भेज ताकि हम जीतें। और कहते जब इस तरीके से इस टोटके से दुआ करते थे ना, तो अल्लाह उनको फतह भी दे देता था। जंगों में जाते थे सबसे पहले वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा खोलते। ये जैसे आज हम भी कोई तवीज़ लटका लें तो बरकात रख लेते हैं। जैसे आपको पीछे सुनाया था ना कि एक हिंदू औरत जुआ खेलने जा रही थी और उसके हाथ से चीज़ें गिरी, तो पूछा क्या हुआ, गिरा के देखा तो आयतुल कुर्सी थी। अरे ये कहाँ से आ गई, तो हम तो समझे कोई गॉड होगा तुम्हारा, कोई बुत होगा। कहती नहीं ये बरकत वाली चीज़ है, इसको जुआ खेलते हुए साथ रखती हूँ तो मैं जीत जाती हूँ। आज हम भी तो यही कुछ करते हैं। कानू यस्तफते होना लल्लज़ीन, जरा सा अपना जायजा ले। देखिए हमेशा हम ये क्यों सोचते हैं कि मैं ही मजलूम हूँ, शायद मैं ज़ालिम हूँ। हमेशा मैं ये क्यों सोचती हूँ कि दूसरे का ही कसूर है, शायद मेरा भी तो हो सकता है। मेरा अपना हिदायत के साथ क्या ताल्लुक है? मसलन मैं अपने ऊपर लेती हूँ, आप रोज़ मुझसे पढ़ने आए, मैं आपकी कदर ही ना करूँ, ना मेरा मूड सीधा, ना मेरा दिल पढ़ने को, ना मैं वक्त पे आऊँ, ना मैं जाऊँ। तो जिस दिन मैं इधर आके बैठ जाऊं और आप में से कोई ना आए तो मुझे कदर आएगी ना। दो भी बैठे हैं, बैठे तो थे, इन्होंने मुझे तो पढ़ाने का मौका दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे इनकी कदर करनी चाहिए थी। तफसीर साथी का आज फिर रेफरेंस दे रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत तफसीर है, मुझे लगता है स्टॉल पे हमारे बुक स्टॉल में होनी चाहिए। सिंपल, टू दी पॉइंट और बहुत ज्यादा ऑथेंटिक रिवायत तफसीर है ये। इसका रिसेंटली तर्जमा उर्दू में हुआ, वरना यह अरबी में थी। उसके कोटेशन पढ़ के सुनाती हूँ। दौरे जाहिलियत में जब कभी इनके और मुशरिकों के दरमियान जंग होती तो वो ये दुआ करते थे, ए अल्लाह इस नबी के जरिए हमारी मदद फरमा। और वो मुशरिकीन को डराया करते थे कि इस नबी का जहूर होने वाला है, वो इस नबी के साथ मिलकर मुशरिकों के खिलाफ जंग करेंगे। ठीक है, तो फिर इससे मुराद यहूद की वो दुआएं जो मुशरिकीन से शिकस्त खाने पर मांगा करते। यहूद जो दुआएं करते थे कि या अल्लाह आखिरी नबी को जल्द भेज दे ताकि इसका साथ देकर हम मुशरिकीन पर गलबा करें। कहीं आज हमारा तो ये हाल नहीं है हक के साथ? मैं अक्सर सोचती हूँ कि कई दफा मजबूरियों के पर्दे में हमारा निफाक छुपा रहता है। मैंने देखा है जिन पे कोई मजबूरी भी नहीं होती, जी बात लोग उनको रोकते हैं, घर वाले, कभी कभी होता है ऐसा, बात अब सासों का भी होता है कि ये 4 घंटे के लिए चली जाएंगी घर से तो घर का काम कौन करेगा, बट कभी कोई भी नहीं होता हमारा, हम हर तरफ से अल्लाह की रहमतों से खुद मुख्तार होते हैं, हम फिर भी नहीं करते वो काम। उस वक्त एक इंसान सोचे कि अगर मैंने नहीं ये काम करना तो किसने करना है। तो तड़प रखना, तलब रखना बिल्कुल फर्क चीज है, बट उसके लिए कोशिश करना, तन मन धन लगा देना, ये और बात है। और यकीन कीजिए कि यहूद के उलमा को मौत की तरह यकीन था कि नबी सल्लम सच्चे नबी हैं। मा अरफू मिनल हक, यहूद ने नबी सल्लम को पहचाना। अब्दुल्ला बिन सलाम आपको पता है मुसलमान हो गए थे, इनके बहुत बड़े आलिम थे। अपने इस्लाम लाने के वाक्य में यहूदियों को खिताब करके कहते हैं, ये भी सुनिए, ये मैं बुखारी की एक रिवायत आपके सामने पढ़ने लगी हूँ। कहने लगे, ए कौमे यहूद, अल्लाह से डरो, उस अल्लाह की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, तुम जानते हो कि मोहम्मद सल्लम अल्लाह के रसूल हैं और दीन हक लेकर आए हैं। बुखारी की रिवायत है, पूरे यकीन से कोट कर सकते हैं आप। सहल से रिवायत है जो है खैसमा के गुलाम थे, कि मैं यतीमी की हालत में अपने चचा की परवरिश में था, ये लोग ईसाई थे। एक रोज मैंने इंजील उठाई और पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते एक सफ़े पर पहुंचा जो गूंद से अगले सफ़े से चिपका दिया गया था। मैंने इस सफ़े को दूसरे से अलग करके खोल डाला, फितरत है इंसान की, इस सफ़े पर नबी सल्लम का हुलिया और सिफात लिखी हुई थी। इसी वक्त मेरे चचा आ गए, जब उन्होंने मुझे इंजील का वो सफ़ा पढ़ते हुए देखा तो मुझे मारा और कहने लगे, ये क्या हरकत है, तुमने ये वर्क खोल कर क्यों पढ़ा। मैंने कहा, इसमें तो नबी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया और सिफात लिखी हुई है। उन्होंने जवाब दिया, वो नबी जाहिर होने वाला ही नहीं है। कहा, छोड़ो छोड़ो, कोई नहीं होना वो जाहिर, अब आप देख लीजिए। इसी तरह नुमान सबाई यमन के यहूदी आलिमों में से थे, वो कहते हैं, जब मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहूर का चर्चा सुना तो मैं आपके पास हाजिर हुआ और आपसे बहुत सी बातों के बारे में सवालात किए, जिनके जवाब सुनकर मुझे आपकी सच्चाई का यकीन हो गया। आखिर इसके बाद मैंने अर्ज किया, मेरे वालिद, जब तौरात का एक सिफर, सिफर कहते हैं चैप्टर को, असफार का लफ्ज आप पढ़ेंगे सूरह जुमा में, जब एक बाब खत्म किया करते थे तो ये कहा करते थे, तुम इस बाब को यहूदियों के सामने इस वक्त तक मत पढ़ना जब तक तुम ये ना सुन लो कि एक नबी यसरब में जाहिर हो गया, जब तुम ये खबर सुन लो तो फिर इसको खोल सकते हो। चुनाचे नुमान कहते हैं कि मैंने आपके मुतल्लिक जब सुना कि आप मक्का में आ गए तो मैंने वो सिफर खोला, मैंने देखा कि इसमें आपकी वो तमाम सिफात लिखी हुई थी जो मैं इस वक्त आप में देख रहा था। और वो सिफात क्या थी, तफसीलात क्या थी, अब आप भी सोच सकते हैं कि नबी सल्लम की क्या खूबियां तारीफें थी। तो कहा, आप किन चीजों को हलाल करार देंगे, किन चीजों को हराम करार देंगे। इसके बाद इसमें ये लिखा था कि आप सबसे बेहतरीन नबी हैं और आपकी उम्मत सब उम्मतों से बेहतरीन उम्मत है, और ये कि आपका नाम अहमद है और आपकी उम्मत हम्मादून होगी। आपको पता है कि तौरात में, अंजील में हमारा नाम क्या लिखा हुआ है, हम्मादून, बहुत हम्द करने वाले, यानी तन्हाई में और खुलेआम हर तरह से अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करने वाली होगी। इनकी नजरों नियाज खुद इनकी जाने होंगी, यानी अल्लाह के सामने क्या देंगे, ये अपनी जाने देंगे। अल्लाह का कुर्ब और नजदीकी हासिल करने के लिए वो लोग जिहाद में अपनी जानों की सौगात पेश करेंगे, और ये कि इनकी किताब यानी कुरान पाक इनके सीनों में महफूज होगा, यानी अपनी किताब की पूरी तरह हिफाजत करेंगे। जब भी किसी लड़ाई में शरीक होंगे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम इनके साथ होंगे, जो इस तरह अल्लाह की रहमत का इन पर साया किए रखेंगे जैसे परिंदा अपने बच्चों पर छाया रहता है। सच्चे ईमान के साथ अल्लाह ताला इस तरह इज्जत देता है। मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं होती कि हम थोड़े हैं या ज्यादा हैं। ईमान थोड़ा है तो फिर फिक्र कीजिए, फिर तो लाखों करोड़ों भी हो जाएंगे तो थोड़े हैं। नुमान कहते हैं, मुझसे मेरे बाप ने कहा कि जब भी तुम इस नबी के मुतल्लिक खबर सुनो तो फौरन इनके पास हाजिर होना और इन पर ईमान लाना और इनकी तस्दीक करना। ये वाक्या सुनकर आपने चाहा कि आपके सहाबा भी इस वाक्य को सुने। तो एक रोज आपने नुमान को बुलाया और उनसे कहा, ए नुमान, हमें वो वाक्या फिर सुनाओ। नुमान ने फिर पूरा वाक्या सुनाया। जब वो ये वाक्या सुना रहे थे, अब इमेजिन करें ना, नबी सल्लम भी वहीं बैठे हुए और आप ही की सिफात और आपकी जो खसाइस थी वो बयान हो रही है, तो आपके चेहरे मुबारक पर मुस्कुराहट थी। वाक्या सुन लेने के बाद आपने फरमाया, अशहदु अल्लाह अन्ना अना रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये सीरत हल्बिया का वाक्य है। तो याद रखिए, आज भी हक जो है ना वो दूसरों को पता है। पीछे बात हुई थी ना उलमा की तहरीफात की, आज भी कुरान सुन्नत हक है। हर मसलक के आलिम को ये बात पता है, लेकिन वो निस्बतें नहीं जीने देती। वो बुजुर्गों की बातें, तकलीद के फंदे, ये चीजें बंदे को छोड़ती नहीं है। और आपको पता है कि काब बिन अशरफ बहुत बड़ा आलिम था यहूद का, नबी सल्लम की शान में गुस्ताखी करता, हजविया शेर करता, यानी आपका मजाक करता, पेरोडी करता, कुरैश को बरगलाता। मक्का में अबू सुफयान ने इससे पूछा, खुदारा बताइए, हमारा दीन अल्लाह को ज्यादा प्यारा है या मोहम्मद सल्लम और उनके सहाबा का? तो आपके नजदीक हम में से कौन बेहतर है और कौन करीब है? हम तो बहुत खाने खिलाते हैं, हम बहुत दूध पिलाते हैं, अपने उमदा जानवरों को जिबा करते हैं, यानी अपनी तारीफें की अबू सुफयान ने, जो मुशरिकों में थी, हॉस्पिटेबल बहुत ज्यादा थे। तो ये सारी बातें सुनकर काब बिन अशरफ ने कहा, तुम इनसे ज्यादा हिदायत जानते हो। हालांकि उनको पता था कि गलत है, और इसी पे फिर वो आयत नाजिल हुई थी जो आप इंशाल्लाह सूरह निसा आयत 52 है गालिबन, कि अलम तरा इलल लजीना उतु नसीबा मिनल किताबी, वो आयत नाजिल हुई थी कि ये ईमान वालों की निस्बत काफिरों को कहते हैं कि हाउला यहदा मिनल लजीना आमनु सबीला। तो बात का खुलासा क्या, लोग माने ना माने हक मनवा लेते अपने आप को। सबसे खूबसूरत वाक्या जो इसमें आपने कभी सुना है कि नहीं, सुना है तो मैं नहीं सुनाती दोबारा, हजरत सफिया का वाक्या। कौन थी? यहूद के एक सरदार की बेटी हुई बिन अख्तब और दूसरे काब बिन अशरफ की भतीजी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा बन गई। गज़वे खैबर में ये आई थी माले गनीमत में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आजाद किया, फिर इनसे निकाह किया। तो ये अपना वाक्या सुनाती है, बड़ा डिटेल से है, कहीं ना कहीं आप कोट भी कर दूंगी, लेकिन जहां बात लंबी ना हो जाए तो मुख्तसरन, कि वो कहती हैं कि मैंने अपने चचा और बाप की रात की बातें अंदर बैठ के सुनी थी, और आपस में यही थी, सुनाओ ये जो शख्स मक्का में आया इसका क्या ख्याल है? तो उसने कहा, ये वही है जिसका हमारी किताबों में वादा है। तुम क्या कहते हो? कहते मेरा भी यही गुमान है। तो क्या ख्याल है, फिर इसको मानना है? उसने कहा, जब तक मेरी जान में जान है मैं इसकी मुखालफत करूंगा। क्यों? अगर मैंने मान लिया, हमने सरदारों ने मान लिया, लीडर्स ने मान लिया, तो पब्लिक तो आम ही फौरन मान जाएगी। कहा, अच्छा फिर मेरा भी यही इरादा है। और दोनों इस बात पे जमे रहे। और हजरत सफिया ने शादी से, इनकी शादी पहले किसी यहूदी से हुई हुई थी, तो इनके शौहर थे जब, तो इन्होंने उनके सामने अपना एक ख्वाब पेश किया कि मैंने देखा है कि चांद ऊपर से आसमान से उतर कर तो मेरे घर के आंगन में गिरा। तो शौहर ने थप्पड़ मारा, उनके चेहरे पे अभी भी थप्पड़ के निशान थे। कहने लगी, तू यसरब के बादशाह यानी मोहम्मद की बीवी बनने का ख्वाब देख रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वही हुआ। तो याद रखिए, आपका भी दिल बताएगा आपको हक क्या। हक की तासीर ही है कि थक जाओ, परेशान हो जाओ, मुश्किलात भी हैं, आपका दिल नहीं उससे भरता। तो ज्यादा जरूरत है इस बात की कि आप और मैं अपना मुहासबा करें कि हम भी हक को पहचान गए कि नहीं। अगर दिल में डाउट है मेरे साथ आके बात करें, मैं सबसे अच्छा आपकी मदद करने को तैयार हूँ कि आपको जो आप पढ़ रहे हैं उस पर शक है तो। है किसी को शक? ये आप सब पहले पुराने 6 साल 8 साल वाले लोग बता दें, लोग कहेंगे आपने इनका जहन ही बदल दिया, ये सारी खराब है, सारी खराब, ये नए लोगों को भी आप खराब कर रहे हैं। याद रखिए एक बात, याद रखे, मैंने सूरत वाकया की एक आयत से एक सबक लिया हुआ है, बड़ा प्यारी आयत है, आप इधर उधर नहीं डालती, लेकिन उसका मतलब अल्लाह कहते हैं, क्या तुमने अपना नसीब ये रखा है कि तुम इस हक को झुटलाओगे? यानी मक्का वालों, तुम्हारा नसीब ही है कि तुमने नबी की मुखालफत करके अपनी बातों से लोगों को दीन से रोकना है, तो जाओ कर लो। तो अपने लिए भी ये रखें। क्या मेरा, मैं इतनी बदनसीब हूं कि एक बंदा हक की तबलीग कर रहा है और मैं लोगों के दिलों में उसके ऊपर डाउट डाल दूं। नहीं मानना ना मानिए, नहीं सुनना ना सुनिए, लेकिन बेतुकी बातें बाहर क्यों फैलाते हैं? ये भी एक शैतान का तरीका होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी इसलाह करे। वाकया तो बेशुमार है जिससे आप ये बात पूरे यकीन से कह सकते हैं कि वह नबी सल्लम को पहचानते थे। सवाल पैदा होता है कि आज के यहूद भी पहचानते हैं? नसारा क्रिश्चियंस जानते हैं कि इस्लाम सच्चा है? तो इल्म वाले जानते हैं, जो चर्चिस में जाते हैं, जिन्होंने सही किताबें अपनी पढ़ी है ना, उनको पता है। लेकिन आम बेचारे जो शराब कबाब और डेटिंग शेटिंग में पड़े, उनको क्या पता? जैसे हमारे जवान कुरान ना पढ़े तो उनको क्या पता है कुरान क्या है? तो इनको भी नहीं पता, लेकिन जो इनके दीनदार हैं उनको साफ पता है। और अगर आपने इसकी तस्दीक करनी है, जाके किसी रिवॉर्ड के स्पीचेस सुनिए। यूसुफ एस्टीस का नाम अक्सर मैं देती हूँ क्योंकि वो प्रीस्ट थे। इतनी मजे की जॉली उनकी स्पीच भी होती है। वो अपने किस्से सुनाते हैं कि हम चर्चिस में बैठ के लोगों को बेवकूफ कैसे बनाते थे। हमें पता होता था हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम करते थे क्योंकि हमने अपने मसलक को साबित करना है। तो अल्लाह ताला पहचानने के बाद हमें किसी चीज से दूर ना करे, ये बहुत सारी बात है। तो क्यों नहीं मानते थे? हसद, हसद मिन अनफुसिहिम, उनके दिलों में इस बात पे हसद था। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर हिदायत से दूर करता है। अगली आयत में जरा सा थोड़ी सी टोन चेंज होती है। भी समझता रहो भी ही अनफुसाहुम, क्या ही बुरी वो चीज है जिससे इन्होंने अपनी जान का बदला लिया। अब अल्लाह ताला का कमेंट है, क्या मिल जाता है इनको अल्लाह के नबी को मानकर और क्या लेकर गए? कैसे? दुनिया ले ली, आखिरत छोड़ दी। क्या किया इन्होंने? अय्यकफुरु बिमान ज़ल्लल्लाहु, ये कि इन्होंने कुफर कर दिया उस चीज का जो अल्लाह ने नाजिल की। क्यों किया भाई ऐसा? बगजन, बगी थी, जिद थी। बाद जब आप गुस्से में होते, आपको पता होता है मैं अपना नुकसान कर रही हूँ, कहते नहीं जाना मैंने, सबको पता शादी में लोग जाएंगे मजा करेंगे, आपको गुस्सा आ गया, आपके कपड़े अच्छे नहीं थे, मैं नहीं जा रही। पता होता है मेरा ही नुकसान होगा, फिर भी करना, ये है बगी। आपको पता है मेरा नुकसान होगा पर किसी के सिरे चढ़ के बुरा करेंगे, इसी से लफ्ज बगावत भी है। अल्लाह कहते बगी है इनके अंदर। अय्युनज़्ज़िला, अब इनकी असल रूट कॉज इस आयत में आपको मिल रही है। भाई इनका क्या बुरा जाता, इनका क्या जाता? क्यों नहीं नबी सल्लम को मान रहे? क्योंकि अय्युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही, ये कि अल्लाह ने नाजिल किया अपने फजल को, अला में ये शाओ, जिस पर चाहा मिन इबादी, अपने बंदों में से। ये प्रॉब्लम है, ये बंदा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जमात में से क्यों नहीं आया, हमारे गिरोह में से क्यों नहीं आया, हमारे बैनर के अंडर क्यों नहीं है, हमारे फिरके में से क्यों नहीं है? फिरका वारियत। आज उम्मत मुस्लिमा को सबसे बड़ा नासूर जो लगा हुआ ना दीन के नाम पे, वो फिरका वारियत है। और दुनिया के नाम पे जो लगा हुआ है वो बेहयाई है, बेगैरती है। गलत चीजों को देखकर हम सब्र कर जाते हैं, लेकिन दुनियावी दीनी एतबार से आप देखिए कि फिरकों ने तोड़ दिया। इसीलिए अल्लाह सुबहान तआला ने यहां बात करती कि असल वजह अंदर हसद था। क्या हसद था भला? पीछे अब कितनी दफा बात हुई, सगे सौतेले का, बनी इसराइल से क्यों नहीं आया ये नबी? अच्छा ये बात नहीं थी अल्लाह ने कुरान में, इनकी तौरात में ये नहीं मेंशन हुआ था कि वो शख्स बनी इस्माइल में से आएगा। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल बी फ्रॉम बनी इस्माइल। क्योंकि आप कहते हैं ना कि पीछे पढ़ के सुनाया था कि ये तो हजरत इस्माइल को कर्स्ड सन कहते हैं, कर्स जिसपे लानत हुई हुई। तो अब एक कर्स्ड सन की कौम को वो कैसे माने? और जब वो नहीं मानते थे नबी सल्लम को इस तरह से, तो क्या वो बुरा कहते थे खुद को? आज एक मसलक वाला दूसरे मसलक को बुरा कहे तो किस वक्त वो अपने आप को गलत कह रहा होता है? वो कहता है ये सबसे बड़ी नेकी मैं कर रहा हूँ कि इनको मिंबर पे आके बदनाम कर रहा हूँ। तो यही बात यहां समझ आ रही। कल जो यहूद नसारा का मुसलमानों से मामला था ना, आज अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों में से मुसलमान दूसरे फिरकों के लिए यही कुछ बोलते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये सोचते थे कि अल्लाह हमारे बाहर से नहीं किसी को हक देगा, यानी हक को हमने अश्योर कराया हुआ, रजिस्टर्ड कराया हुआ है, ये हमारा नाम है और ये हमारी रजिस्टर्ड मेल है, ये कहीं और नहीं जाएगी। नुकसान क्या हुआ? देखिए अल्लाह को ऐसे लोगों पे गुस्सा कितना था। फबाउ भी गदब नला गदब, बस वो लौटे, बाउ के जाना, बट आगे देखिएगा बा है, फिर बाउ भी, तो लौटना मानी है। समझ आई? जैसे मैं आप कहती हूं मैं जाती हूं इस पेन के साथ, तो फिर मैं अगर कह दूं कि मैं लाती हूं इस पेन को, तो एक ही बात है ना। मतलब यह है कि इनकी इन हरकतों पे अल्लाह का गजब इन पर टूटा। वलिल काफिरीन अज़ाबु मुहीन, काफिरों के लिए रुस्वा को नजाब है। क्या पता चला? जब कोई कौम जानते बूझते हक का इनकार कर दे तो फिर अल्लाह ताला का गजब उस पे टूटता है। भोले लोग, मासूम लोग, जिन तक दीन नहीं पहुंचा ना उनकी इतनी पकड़ नहीं है, बट जिन तक पहुंच जाए फिर वो उसकी कदर ना करें, अल्लाह की पकड़ के फलानतुल्लाह इलल काफिरीन, अल्लाह मोहर लगा देता है। पिछली आयत के साथ अगर आप इसको जोड़े ना, तो जब पता लग जाए कि यही रास्ता हक है फिर अपनाए ना, तो पकड़ ज्यादा आएगी। ये तो दुनिया में भी होता है, जानते बूझते जब कोई आपको झुटलाए या आपकी बात ना माने तो आपको गुस्सा ज्यादा आता है। हाँ, बोल पाने में कोई गलत बात कह दे, सुन ले तो कोई और बात हो, तो वो और बात हो जाती है। तो यही बात यहाँ करके अल्लाह ताला ने इनके ऊपर कमेंट दिया। और यकीन कीजिए कि ये वो चीजें हैं कि जो दिलों में छुपी होती हैं, अल्लाह ने सबसे ज्यादा पढ़ी हुई किताब में रख दी। आज भी दिलों में तासुब, दूसरी जमात गिरोह वालों के बारे में हसद, अल्लाह कहते हैं खोल के रखता हूँ कि बख्शा नहीं यो नजीला। आज भी कुछ लोग कहते हैं हमारे बाहर हक नहीं, हक है जो हम कहते हैं, ये किताब पढ़ना और ना पढ़ना, ये सालिम की स्पीच सुनना और किसी की ना सुनना, तौबा तौबा, भटक जाओगे। अपने बच्चों को सारा दिन हम नॉन मुस्लिमों के स्कूलों में घरों में भेजते हैं, पढ़ो खाओ जो मर्जी सिखाओ, राइम सिखाओ, क्रिसमस सॉन्ग सिखाओ, इनको नाचो फुदकाओ, ये बादने हके से लेकर स्कूलों कॉलेजों तक तुम्हारे गुण गाएं, इट्स ओके। बट आप किसी दूसरे मसलक वालों के पास जाके कुरान भी नहीं पढ़ने देते, नहीं नहीं ये वहाबी हो जाएंगे, ये कर देंगे, जो वहाबी है नहीं उनको लोग वहाबी बनाते हैं, और जो अल्लाह से ताल्लुक जोड़ते नहीं है उनको अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने वाला बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि मैं बहुत हक पे हूं। जिद तो ऐसी बड़ी बुरी चीज होती है, ऊपर तासुब की छाल पड़ जाए तो फिर उससे भी बड़ी चीज हो जाती है। तो खुद को ही ठीक करने वाला दूसरे से कैसे फायदा उठाएगा? वो कहते हैं ना, जगह ही नहीं अंदर अपने अपनी तारीफों के अलावा कुछ और भरने की, तो गोया कि यहां आपके मेरे लिए फिर अमल की बात क्या है। खुद पसंदियों से बचें, हक लें, हक का साथ दें, अपनी जात में कोई कमी पेशी दिखती है उसको चेंज कर लें, और एक दफा यकीन है ना कि हक आ गया जिंदगी में, ना फिर इधर देखे ना उधर देखे, वरना बहक जाएंगे। और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि कोशिशें हमारी हक के रास्ते की हों। और किस तरह आप देखिए कि यहाँ जो बात है ना, बे समझता रहो भी ही, यहाँ फिर खरीद फरोख्त है, शायद चौथी पांचवी दफा आ रहा है हमारे शुरू से लेके अभी तक, दुनिया में यही सौदेबाजियां हो रही हैं। अपनी कामयाबियों को, आखरत की इज्जतों तरक्कियों को छोड़कर लोग दुनिया की चंद चीजों को लेने लगते हैं, और यहाँ फजल से क्या मुराद है, मिन फजली ही मुराद नबूवत और रिसालत है। हसद किस बात पे था कि अल्लाह ने अपनी रिसालत अब बनी इसराइल से बनी इस्माइल में क्यों डाल दी? सवाल अगला लिखिए, बाओ भी गदबे नला गजब क्या, गजब पे गजब क्या टूटा? तो कतादा एक मुफस्सिर है, कहते हैं पहला गजब यह था कि उन्होंने हजरत ईसा और इंजील का इनकार किया, और दूसरा गजब इस बात पर था कि मोहम्मद सल्लम और कुरान का इनकार किया। जियूस ना तो हजरत ईसा को मानते हैं ना नबी सल्लम को मानते हैं। लिल काफरीन अजाबु मुहीन से क्या मुराद है? चूंकि कुफर का सबब हसद और बुगस था ना, जो गरूर से पैदा होता है, तो गरूर की सजा क्या दी कि दुनिया में भी जलील किया और आखरत में भी। सूरह गाफिर आयत 60 में हम पढ़ेंगे, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, के तकबर करने वाले जहन्नम में आएंगे, और अल्लाह का फैसला ऐसे लोगों के लिए दुनिया में यही होता है। कोई बात जो आज की इतनी बातों को सुनने के बाद दिल में आई?
मुझे ना ये बात बहुत ही रही है, हम करते हैं नाफरमानियाँ, कुछ चीज़ें हमसे गलत होती हैं, लेकिन ये जो इतनी बड़ी बात है कि ये अल्लाह ताला का कुरान है और ये अल्लाह ताला का नबी है, मैं जानती हूँ, बेशक मैं उसकी बहुत सारी चीज़ें पैरवी नहीं कर रही, लेकिन मुझे ये, मैं इस चीज़ को तो मानती हूँ ना कि ये कुरान है और ये अल्लाह के नबी है, और मैं इस पर खड़ी हूँ। इंसानी शख्सियत से तो चलो मुझे मेरा लफ्ज जो है मुझे लगता है गलत सही तरीके से।
देखिए लोग शराब पीते हैं, सारे डॉक्टर्स कहेंगे कि शराब से लंग्स कैंसर होता है, तो क्यों पीते हैं? वही पीछे ख्वाहिश तमन्ना, लोग शैतान के हाथों में तरने वाला बनते हैं। और याद रखिए ये जो कुरान सुन्नत नमाजें दुआएं अस्कार, ये सारी हमें इस काबिल करती हैं कि शैतान से बचें। जब अमली जिंदगी में शैतान से हम नहीं बच रहे होते ना, तो फिर वो हमारे ऊपर सर पे चढ़ता है, शिर्क करवाता है। तो बस ये दुआ करें कि हम शैतान के वार से बचें। और कोई बात जी? आप
सवाल, मेरा एक सवाल है, ये इंजील की हैसियत जो आज پتہ چلی کہ وہ حدیث کے برابر ہے, جیسے حدیث وسلم کی حدیث بیوی والی نے لکھی. تو میں یہ سوچ رہی کہ یہ تو انجیل والی نے لکھی, تو کیا یہ ساتھ تورات ہی رکھتے ہیں؟
دیکھیے بیسیکلی بائبل جو ہے نا یہ دو حصوں میں, اس وقت بھی اگر آپ نے کبھی کھول کے دیکھی ہو نا, اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ. اولڈ ہے تورات, نیو ہے انجیل. بات سمجھ گئے؟ دونوں کا مجموعہ آج بائبل کہلاتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ذہنوں میں بچپن سے ہی سنتے سنتے, وہ کہتے ہیں نا کہ بری بات غلط بھی ہو تو سنتے سنتے اس کا اثر ہونے لگتا ہے. پتہ نہیں کیوں ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ یہود نصارہ کے لیے نیگیٹو ہی آتا ہے. از اٹ ٹرو؟ نفرتیں اور بدگمانیاں اور ہیٹرڈ اور لائک جیسے بھی ہے. میں جب یہ سبق آپ کو پڑھا رہی تھی نا تو میرے دل میں آ رہا تھا بہت کچھ اکٹھا ہے. بہت سارے لوگ آج بھی لفظ یہودی نصرانی یا بائبل تورات سن کر ایک دم اوفینسو ہو جاتے ہیں, نہیں نہیں ان کی بات نہیں کرنی, ان کی غصے میں آ جائیں گے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نا کہ کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. آپ پڑھیں گے یہ آیت آئے گی انشاءاللہ سورۃ آل عمران میں آئے گی کہ اہل کتاب آؤ ان چیزوں میں کی طرف جو ہمارے اور تمہارے بیچ میں ایک جیسی ہیں, کامن گراؤنڈ, مشترک. اب اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے اندر کیا ہے تو ہم ان کو کیسے جانیں گے؟ بار بار تو قرآن کی جو صفت بیان کی جا رہی ہے تورات اور انجیل کے بارے میں, مصدق اللی ما معاکم, یہ اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے, ویریفیکیشن ہے. تو جب ہم بنی اسرائیل کی چیزوں کو کوٹ کرتے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ذرا اس کا تھوڑا سا دعویٰ پوائنٹ دیکھیے گا جو شاید آپ کو میں سمجھا سکوں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں تو ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہوگی. آپ دیکھیے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہوئے بائبل کی کوئی چیز کوٹ کرتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے نا کہ بائبل پڑھتے ہوئے وہ بھی قرآن کی کوئی چیز کوٹ کرے. جب ہم مسلمانوں کا ایک عام مزاج یہ بن جائے گا کہ کم آن ایویڈنسز دیکھ لیتے ہیں, دلائل دیکھتے ہیں, لو اوکے تمہارے بارے میں تمہاری اپنی کتاب میں ہے, دیکھو میں نے تو اپنی اس بات میں تمہاری فلاں بات کوٹ کی ہے اور یہ ہمیں پتا ہے کہ قرآن پورا سچا ہے اور دوسری طرف اضافے ہے یا کمی ہے نا. تو ہم بائبل پڑھیں ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا وہ تورات پڑھتے ہوئے یا بائبل کو سمجھتے ہوئے قرآن کوٹ کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا. تو ہمیشہ محبتوں سے بات کریں, محبت فاتح عالم. ہم بعض دفعہ اپنے فرقے کے خلاف والوں سے اتنی نفرت کر رہے ہوتے ہیں, اور مزے کی بات دیکھیے گروسری سٹورز نان مسلمز کے, کلوتھنگ سٹور ہمارے فیورٹ نان مسلم کے, پسندیدہ جگہ گھومنے کی نان مسلمز کی, ہوٹل ان کے, جہاں ان کے دین کی بات آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ یہی چیز ہمارا آج اپنے کلچر میں, ہم جس فرقے سے ذرا سے اختلاف رکھیں یا اس کا نام ہمارے نام سے فرق ہو تو ہم ویسے دعوتوں میں, کھانوں میں, شادیوں میں, لین دین میں سارا خاندان ایک ہے. جہاں لفظ دین آئے گا, دین کی کوئی بات آئے گی, وہاں لوگ کٹنے مرنے کو بڑھتے ہیں. تو ہمارے نبی کی سنت کیا تھی کہ آپ نے محبتوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جیتا تھا. آج میں اور آپ اس طرح کے سوچ پہ آ جائیں گے, اور خاص طور پہ بھی میں یہاں کہتی ہوں جو ہم ویسٹ میں رہنے والے ہیں. نقصان کیا ہوتا ہے ایک جو بہت بڑا ہے, جو اس وقت میں نہ مینشن کروں تو پھر ہو سکتا ہے میری اس بات کو مس یوز کرے, اور وہ کیا ہے کہ جب ہم ان کی باتوں کو پڑھتے کوٹ کرتے یا ان سے محبت کرتے ہوئے اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا. پچھلے سبق نے آپ کو ایک گائیڈ لائن نہیں دے دی کیا؟ فتح میں نون ابھی باد الکتابی و تک فرون ابھی باد. جب آپ اپنا آپ چھوڑ کے ان کو لیں گے تو پھر تو آپ بڑے خطرے میں, پھر تو پلیز آپ مت جائیے ادھر. لیکن اگر آپ اپنے حق کو ساتھ لیتے ہوئے ان کے ساتھ ملتے ہیں, ان کو اپنی باتیں بتاتے ہیں, دین کی بات لیتے ہیں, ذرا محبت کرتے ہیں, دوستی کرتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بیریئرز جو ہے نا یہ بریجز میں بدلیں گے. ہم ویسٹ میں رہتے ہیں, دن کے 12 گھنٹوں میں سے میرے حال 8 گھنٹے تو کہیں نہ کہیں آپ کا یا آپ کے بچوں کا انٹریکشن نان مسلم سے ہوتا ہی ہے. تو کیوں نہ ایک دفعہ ہم ان کے ساتھ مل کر اپنے اور ان کے دین کو بھی ڈسکس کریں تاکہ ان کا فائدہ ہو. میں کسی کی بات سن رہی تھی تو وہ کس طرح اسلام پہ آئے, کسی نے ان کو ایڈریس دیا, وہ جا رہے تھے شاید ہندوازم سیکھنے, تو کسی نے جب اس کو ایڈریس دیا نا تو وہ ایڈریس ایسے تھا کہ ایک مندر تھا تو اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا ادارہ تھا کوئی, وہ ایڈریس کی غلطی کی بجائے ادھر کی بجائے ادھر آ گیا اور ارشد اللہ الہ الا اللہ ارشد اللہ محمد رسول اللہ. تو کٹے کٹے نہ رہیں, آپ کے اوپر والے, آپ کے نیچے والے, آپ کے دائیں والے, آپ کے بائیں والے انسان ہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں آگے ہم پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف تو کیا کہا, قولوا له قولا لینا, نرم بات کرو. سورۃ عبس میں بھی آتی ہے نا, اس کے ساتھ نرم بات کرنا, لا اللہ شاید وہ مان لے. اللہ کو پتا تھا کہ نہیں ماننا فرعون نے, لیکن اللہ نے موسیٰ کو دل کی بات نہیں بتائی, کہا آپ جا کے نرم بات کریں اور یہ تذکر ہے, شاید نصیحت لے لے. تو دیکھیں یہ انسان ہے اور ہمیں انسانوں سے محبت کرنی چاہیے. ہیومینٹی بہت بڑی بیس ہے کسی سے محبت کرنے کی. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں انسان دوست بنا دے.
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.